सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं किसी एक विषय पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं, और उसका कारण केवल यह है कि आज बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें आप खबरें भी कह सकते हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपको जानकारी देना जरूरी है। तो मैं आज आपको छोटी छोटी जो सूचनाएँ हैं उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। खासकर ये जो छोटी छोटी सूचनाएं हैं, देखिए इसमें होता क्या है। इसमें से कोई सूचना ऐसी भी हो सकती है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक बन जाए, या कोई सूचना ऐसी भी हो सकती है जो आंसर राइटिंग में आपके लिए कंटेंट का काम करे, तथ्यों का काम करे, या कोई सूचना ऐसी भी हो सकती है कि यदि आपके दिमाग में दर्ज है तो प्री एग्जामिनेशन में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प तक पहुंचने में आपकी मदद कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, आज किसी एक व्यापक एक ही टॉपिक पर बात न करके, जो कि घटनाएं बहुत सी हैं, सूचनाएं बहुत सी हैं, तो उन्हीं का कलेक्शन आप तक पहुंचाया जाए। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा, न्यूज़ में भी सुना देखा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की, चाहे वो अभी काम कर रहे हों या रिटायर होकर के पेंशन ले रहे हों, उनके डीए में, डियरनेस अलाउंस कहते हैं जिसे, महंगाई भत्ता कह लीजिए, उसमें 11% की वृद्धि कर दी है। यानी कि शुरू में 17% थी, उसे बढ़ा करके अब 28% कर दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये जो डीए है ये रोक दिया गया था, खासकर कोरोना की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है कि जब भी आपको, खासकर इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है, और इकोनॉमिक्स में तो देखिए रोज ही घटना घटित होती है, रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आपको चाहिए कि उसे आप थोड़ा सा 10 मिनट दें, पढ़ने में नहीं, उसके बारे में सोचने में कि अच्छा ये घटना हुई तो इस घटना का क्या प्रभाव होगा। मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि हो सकता है कि शुरू में आपका दिमाग ना सोच सके, लेकिन मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि धीरे धीरे आपका दिमाग सोचने लगेगा और आपको उस स्तर तक पहुंचा देगा जो सिविल सर्वेंट बनने के लिए जरूरी है। क्योंकि अपनी तरफ से विचार करने की क्षमता जब तक आप में नहीं आएगी, तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मुझसे अक्सर आंसर राइटिंग के बारे में बताने को कहा जाता है। दोस्तों, आंसर राइटिंग बेसिकली साइंस से ज्यादा एक आर्ट है, और वो आर्ट इस तरीके से आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि डियरनेस अलाउंस जो डीए है वो 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया गया। तो मैथमेटिक्स लगाइए थोड़ा सा, कि अगर किसी को मान लीजिए कि 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही थी तो अब उसे कितनी सैलरी मिलेगी, लगाइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स कीजिए। और फिर बाकायदे खबरों में आपने ये भी पढ़ा कि लगभग 34,400 करोड़ रुपये सरकार पर इसका भार आएगा, यानी कि 34,400 करोड़ रुपये सरकार का खर्च हो जाएगा। तो 34,400 करोड़ मोटे तौर पर बात, मेरी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो जब ये दिया जाएगा तो उसका प्रभाव फिर मार्केट में किस तरीके का होगा? मुद्रा की आपूर्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसका प्रभाव महंगाई पर कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वो चीज़ें स्थिर रहेंगी, इन्फ्लेशन जिसे आप मुद्रा स्फीति कहते हैं? तो इन सब पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और अगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आपकी समझ है, तो बेहतर है इसी आधार पर आप एक तरीके से रिविज़न कर लेंगे, जो होना ही चाहिए। इस तरह से आप विचार कीजिए। दोस्तों, आपको एक, आप लोगों को एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, और खासकर ये जो ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो कभी कभी इन चीजों का बड़ा महत्व हो जाता है, वो ये है कि बकायदे एक आयोग गठित किया गया है जो पिछड़ा वर्ग की जो उप श्रेणियां होंगी उनका निर्धारण करने के लिए आयोग बनाया गया था। और ये जो आयोग बनाया गया था हमारे अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित था, है ना, संविधान का अनुच्छेद जो 340 है उसके अंतर्गत इस आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। ये जानकारी में आपके होनी चाहिए, बकायदे रेडियो न्यूज में ये खबर थी। इसके बाद दोस्तों, रेडियो न्यूज में ही एक डेटा बताया गया, और वो ये कहा गया कि जो 1 लाख से अब अधिक आबादी वाले, चाहे आप गांव कह लीजिए, चाहे कस्बे कह लीजिए, चाहे आप शहर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो भी सभी गांव हैं, वहां नल से जल पहुंचा दिया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है, जल जीवन मिशन जो हमारे यहाँ चल रहा है, और पिछले साल मेंस में बकायदे इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इस बार कोई इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो अगर आप तरीके से कहीं ना कहीं ये तथ्य डाल देते हैं कि ये बहुत बड़ी सफलता है जल जीवन मिशन की, बहुत बड़ी बात है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर उससे प्रभावित होगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, यही आंसर राइटिंग के क्षेत्र की वो सजावट है, वो अलंकार है, वो गहने हैं जो आपके उत्तर को सुंदर बनाते हैं, उसमें चार चांद लगाते हैं। लेकिन यहां जो चार चांद लगते हैं वो अच्छी राइटिंग से नहीं लगते, तथ्यों से लगते हैं, है ना। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा कि स्पेस के पहले हमने इस पर चर्चा भी की थी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो धारा है 66A, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निरस्त कर चुका है, असंवैधानिक घोषित कर चुका है, सरकार बकायदे उसके अंतर्गत मामले दर्ज कर रही थी, चलाए भी जा रहे थे। तो अब केंद्र सरकार ने बकायदे राज्यों को ये निर्देश दिया है कि प्लीज इसके अंतर्गत कोई मामला दर्ज न किया जाए, और अगर कोई मामला चल भी रहा हो तो उसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की बड़ी आलोचना की थी कि ये क्या हो रहा है, जिसे बकायदे असंवैधानिक ठहराया जा चुका है या कानून की जिस धारा को निरस्त किया जा चुका है उस धारा का प्रयोग अभी भी हो रहा है। और सच पूछिए तो ये सरकार के पार्ट पर ये एक तरीके से बहुत ही नीचा देखने वाली बात है, शर्मनाक बात है। चलिए, पॉलिटिशियंस को नहीं मालूम कि कौन सी धारा है, क्या है ना, बदलते रहते हैं वो, तो अस्थाई कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। आपने देखा कि अभी मंत्रिमंडल बदला तो पता लगा कि पहले दिन शिक्षा मंत्री हमारे कोई थे, अगले ही दिन शिक्षा मंत्री कोई हो गए, तो वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, याद रखिए, ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को देखे और अपने जो लीडर्स हैं, यानी कि जो बकायदे अस्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, उनको बताएं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका उपयोग, इस तथ्य का उपयोग आप बकायदे जो सिविल सर्विसेज का आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई एक दो बातें और हैं। आज आपने बकायदे अखबारों में पढ़ा भी होगा, खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो तो आप देखिएगा, यूट्यूब पर जाकर के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने भी इस कांवड़ यात्रा में भाग लिया था, भागलपुर से लेकर के और बैद्यनाथ धाम तक शायद 80 किलोमीटर की लगभग लगभग यात्रा होती है। बकायदे कंधे पर कांवड़ उठा करके, कांवड़ एक डंडा सा होता है, उसके दोनों ओर लोटे जल में भरे हुए होते हैं, और फिर आप कंधे पर लेकर के नंगे पांव चलते हैं। मैंने किया था, उस समय शायद मैं MA फाइनल वगैरह में था, जोश होता है कर लिया, लेकिन भगवान से मैं हाथ जोड़ लिया था कि भगवान अब इतनी तकलीफ तू मत देना भोले बाबा, क्योंकि तुम तो बहुत सीधे साधे हो, कैसे अपने भक्तों को इतनी तकलीफ दे सकते हो। वाकई मैंने यही बात कही थी। खैर, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बकायदे ध्यान रखते हुए कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी, उत्तराखंड सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त रूप से फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, और कहा है कि ये स्थितियां चल रही हैं, तीसरी लहर के बारे में सोचा जा रहा है, प्रधानमंत्री लगातार देश से अपील कर रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही जरूरी नहीं है कि वो आएगी ही, हमें उसे रोकना है और इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार इसकी अनुमति दे रही है, जबकि इससे ठीक पहले, देखिए कुंभ मेला का उदाहरण हमारे सामने है, जो सेकेंड वेव आई थी उसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि जो कुंभ मेला लगा वो उन्होंने सुपर स्प्रेडर का काम किया, क्योंकि कुंभ मेले में देश भर के लोग गए थे, वहां से लौटे और उनमें कोरोना संक्रमित हुआ और जा करके दुनिया भर का उन्होंने वो संक्रमण फैला दिया। यहां तक कि जो दूसरी यात्राएं हैं, चार धाम की यात्राएं, वो सब कई यात्राएं स्थगित की गई हैं। ऐसी स्थिति में ये कांवड़ यात्रा करनी क्यों जरूरी थी, तो बकायदे उसने राज्य सरकार को भी नोटिस दिया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है कि आप इसके बारे में बताइए। और सच बात यह है कि इस तरह के जो राज्य सरकार के निर्णय होते हैं वो थोड़े से दुखद तो होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर एक जो एक राष्ट्रीय रक्षा होती है या सुरक्षा होती है, जो हित होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में या एक समूह की भावनाओं के बारे में जिसका संबंध सीधे सीधे लोगों के जीवन से हो। क्योंकि इससे पहले कोर्ट बकायदे ये कह चुका है कि नहीं, जो जीवन का हक है, जीने का जो अधिकार है, वो धार्मिक स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए ये बात, ये सुप्रीम कोर्ट का ही कथन है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक और भी अच्छी बात कही है, और वो बात खासकर उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वहां की राज्य सरकार से ये कहा था, कुछ उसने इंस्ट्रक्शन दिए खासकर कोरोना के स्थितियों को देखते हुए, कि अब आप जो है ना हर जिले में इतनी इतने एम्बुलेंस होने चाहिए, इतने आईसीयू बेड होने चाहिए, इतना टीकाकरण होना चाहिए, इस तरह से बकायदे उसने निर्देश दिए। तो उसके अगेंस्ट में फिर जब सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट हम अब देखेंगे कि खासकर ऐसी स्थितियों में जो आपातकाल की स्थिति होती है, कोरोना जैसे स्वास्थ्य स्थितियाँ आती हैं, तो न्यायपालिका को कहाँ तक दखल देना चाहिए कार्यपालिका के कामों में। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि बोल के देखिए, जब इस तरह के कोई भी मामले आते हैं, कोई भी स्थिति होती है, तो उसे निपटने के लिए सैकड़ों सुझाव हो सकते हैं, सबके पास अपनी अपनी राय हो सकती है, अपने अपने तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तरीका कोर्ट का भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट अगर कुछ कोई बात कहती है तो वो फिर निर्णय लेने का अधिकार तो राज्यों को नहीं रह जाता, फिर तो आपको लागू करना ही है, नहीं तो पता लगा कि मानहानि का दावा किया जा सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखना होगा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक रूप से अदालतें न्यायालय कहाँ तक दखल दे सकती हैं, इसके बारे में हम बकायदे विचार करेंगे। अब ये एक तथ्य है, अब इस तथ्य का उपयोग आप कहाँ करेंगे? देखिए, मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे आप अपडेट करते चले जाते हैं अपने टॉपिक्स को। दोस्तों, इसका उपयोग करेंगे आप न्यायिक सक्रियता के मामलों में, और न्यायिक सक्रियता पर आप देखिए कि लगभग हर साल मेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप वहां इसका उपयोग कीजिए कि कैसे न्यायालय को खुद भी कभी कभी ये लगने लगता है कि नहीं, शायद वो अपने संवैधानिक सीमा को लांघ रही है, और वहां वो फिर सतर्क होती है और फिर अपना पुनरीक्षण करती है, तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज ये कुछ खबरें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अगर कुछ है तो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: नीरज अरोरा, रोहिताश गुर्जर जयपुर से, दीपक श्योरन चरखी दादरी हरियाणा से, सूरज सिंह सेमापुर बिहार से, और नीरज वर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।